तारीख 1 अगस्त दिन शनिवार, बीबीसी इंडिया बोल, मैं हूं मोहनलाल शर्मा। याकूब मेमन को फांसी पर उठे बवाल से एक बार फिर से इस सजा के औचित्य पर बहस ताजा हो गई है। सवाल बार बार उठता रहा है कि भारत में मृत्युदंड के प्रावधानों को क्यों न खत्म कर दिया जाए। दुनिया के ज्यादातर लोकतांत्रिक देशों ने इस प्रावधान को खत्म कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र ने भी इसे रोके जाने के पक्ष में कई बार प्रस्ताव पारित किया है, लेकिन फांसी के पक्षधरों का कहना है कि दंड का प्रावधान न्याय के लिए जरूरी है। आप क्या सोचते हैं, यही है आज का विषय। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1811-7001। लेकिन थोड़ा सा ठहरेंगे और सुनेंगे बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, प्रगति सक्सेना से। म्यांमार के राष्ट्रपति दयन सैन ने देश के 4 क्षेत्रों में भारी बाढ़ के कारण आपात स्थिति की घोषणा कर दी है। बाढ़ की वजह से अब तक 27 लोग मारे जा चुके हैं। म्यांमार में पिछले कुछ हफ्तों से लगातार बारिश हो रही है। चिन, मगवे, सगेंग और अखाइन क्षेत्र इससे बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। हजारों लोगों ने बौद्ध विहारों में शरण ली है। कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि अल्पसंख्यक रोहिंग्या मुसलमानों को बाढ़ से बचने के लिए शरण नहीं मिल रही है। अफगान तालिबान सुप्रीम काउंसिल के एक प्रवक्ता मुल्ला अब्दुल मनन नियाजी ने बीबीसी को बताया है कि एक नए नेता के चयन के लिए काउंसिल से परामर्श नहीं किया गया। गुरुवार को खबर आई थी कि मुल्ला उमर की मौत के बाद मुल्ला अख्तर मंसूर को तालिबान का नेता चुना गया है। प्रवक्ता मुल्ला नियाजी ने कहा कि काउंसिल नया नेता चुनने के लिए 4-5 दिनों में बैठक बुलाएगी। संवाददाताओं के मुताबिक प्रवक्ता की इन टिप्पणियों से साफ लगता है कि तालिबान के भीतर मतभेद पैदा हो गए हैं। खबर है कि अफगानिस्तान का चरमपंथी गुट तालिबान सरकार से शांतिवार्ता के विचार से अब पीछे हट रहा है। तालिबान के नए नेता के तौर पर नियुक्ति के बाद मुल्ला अख्तर मंसूर ने एक कथित ऑडियो संदेश में शांतिवार्ता को दुश्मन का प्रचार अभियान बताया और कहा कि तालिबान अपना जिहाद जारी रखेगा। माना जा रहा है कि पिछले महीने तक उन्होंने ही तालिबान नेताओं और अफगान सरकार के बीच बातचीत का समर्थन किया था। बोइंग 777 विमान के अवशेषों को जांच के लिए फ्रांस ले जाया गया है। इन्हें गुमशुदा मलेशियाई एयरलाइन फ्लाइट MH370 के अवशेष माना जा रहा है। विमान के एक पंख का हिस्सा हिंद महासागर के रीयूनियन आइलैंड पर पाया गया था। इस गुमशुदा विमान की खोज का नेतृत्व ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री जूली बिशप ने कहा कि इन अवशेषों की जाँच से इस उड़ान में गायब हुए यात्रियों के परिवारों को कुछ जवाब जरूर मिल जाएंगे।
I understand that the experts are carrying out drift analysis, looking at currents and the like.
मैं समझती हूँ कि विशेषज्ञ इसकी जांच कर रहे हैं और संभावना इस बात की लग रही है कि जिस जगह हम तलाश कर रहे हैं वहीं विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ हो और फिर इसके अवशेष अफ्रीकी तट के तरफ बह गए हों। ऑस्ट्रेलिया तलाशी के अपने प्रयास इसी संभावना के आधार पर जारी रखेगा। ये थे जूली बिशप के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। तुर्की की आधिकारिक न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक पिछले एक हफ्ते में कुर्द चरमपंथी गुट PKK के ठिकानों पर हवाई बमबारी में करीब 260 कुर्द लड़ाके मारे गए हैं। ये बमबारी तुर्की के भीतर और उत्तरी इराक के कुछ इलाकों में की गई। PKK ने अभी तक घायलों या मृतकों की कोई रिपोर्ट जारी नहीं की है। तुर्की इराक और सीरिया से लगी अपनी सीमा पर इस्लामिक स्टेट के चरमपंथियों पर भी बमबारी कर रहा है। नेटो देशों ने तुर्की के आत्मरक्षा के इस हक का समर्थन किया है, लेकिन जिस पैमाने पर बमबारी की गई उस पर कुछ देशों ने चिंता भी जताई है। यमन के उपराष्ट्रपति खालिद बहाहा यमन के दक्षिणी शहर अदन पहुंच गए हैं। 2 हफ्ते पहले अदन से स्थानीय लड़ाकों ने हूती विद्रोहियों को खदेड़ दिया था।
नेता बोले,
अफसर बोले,
पैसा बोला,
बंदूक बोली,
अभिनेता विलेन बोले,
नहीं बोल सके तो बस
आप। अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल। बीबीसी इंडिया बोल।
स्वागत है आपका बीबीसी इंडिया बोल कार्यक्रम में। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। कार्यक्रम का विषय आज आप जान चुके हैं। हमारी टेलीफोन लाइनें खुल चुकी हैं। फोन नंबर मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं। फांसी का औचित्य क्या है? 1811-7000 और 1811-7001 पर मेरे साथ कार्यक्रम में शामिल हैं विवेकानंद फाउंडेशन के फेलो और दक्षिण एशिया में सामरिक व रक्षा मामलों के जानकार सुशांत सरीन। साथ ही आप सब श्रोता भी कार्यक्रम में शामिल हैं। दोनों पक्षों की हम बात करेंगे। कुछ फांसी के पक्षधर हैं और कुछ इसके खिलाफ बात करते हैं। सबसे पहले मैं कार्यक्रम में सुशांत सरीन के पास ही चलता हूँ। सुशांत, जी सुशांत के पास हम बाद में चलेंगे। कार्यक्रम में सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिरकार फांसी का औचित्य क्या है। खासकर कुछ लोगों का तर्क है कि इसे एक बर्बर समाज की निशानी माना जाता है, और कुछ लोगों का कहना है कि ये इससे अब खत्म हो जाना चाहिए। फेसबुक पर बहुत सारी टिप्पणियां आई हैं, कार्यक्रम में एक एक करके उनको भी शामिल करेंगे, लेकिन पहले एक श्रोता को शामिल कर रहे हैं। जी नाम बताएं और कहां से बोल रहे हैं।
हेलो।
जी हाँ
जी, गांव बेड़ा बना तहसील गुड़ा वाला नहीं, जिला बाड़मेर से हरीश बेड़ बात कर रहा हूँ सर।
जी हरीश जी, अपनी बात रखिए आप।
तो ये कहना चाहूंगा, पिछले जो उसी में मेरा यही कहना था और इस कार्यक्रम में यही कहना चाहूंगा, पत्ते गिर सकते हैं पर पेड़ नहीं, धरती सूख सकती है दरियाव नहीं। यदि फांसी के फंदे पर लोगों को नहीं सड़ाया तो वो सुधरेंगे नहीं सर।
यानी कि फांसी के फंदे पर चढ़ाना आपको लगता है बहुत जरूरी है।
बहुत जरूरी है, यदि वो गलती करता है, वो सजा के लायक है तो उनको फांसी पे सड़ाओगे तो लोग सुधरने वाले, नहीं तो ऐसे आतंकवाद फैलाते रहेंगे, भारत को लूटते रहेंगे। भारत कई समस्याओं से जूझ रहा है, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, बेरोजगार, हर से जूझ रहा है। पहली सबसे पहली मोटी समस्या है तो ये आतंकवाद है। इस आतंकवाद से फांसी के फंदे से ही निपटा जा सकता है सर।
जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में अपनी राय रखने के लिए। सीधे सुशांत सरीन को कार्यक्रम में हम शामिल कर रहे हैं। सुशांत जी, ये जो हमारे श्रोता कह रहे हैं, क्या आप इनकी बात से सहमत हैं?
देखिए, मैं व्यक्तिगत तौर पर तो सहमत हूं। मैं मानता हूं कि ये, जबकि एक डिबेट जरूर चल रहा है कि क्या फांसी की सजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, लेकिन मेरा जो पक्ष है वो इसके हक में है कि होनी चाहिए। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि एक तो ये डिटरेंस जरूर होता है, लोगों को कत्लेआम करने से जरूर रोकता है, और दूसरा एक खौफ भी उनमें डालता है। लेकिन सबसे जरूरी ये है कि अगर आप जस्टिस देना चाहते हैं लोगों को, तो बहुत लोगों का ये मानना है कि फिर खून का बदला खून ही होता है, और अगर कोई आदमी किसी और व्यक्ति की जान लेता है, जानबूझ करके लेता है, तो फिर मौत की सजा ही उसके लिए
एक उचित सजा है। जी सुशांत सरीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, कार्यक्रम में लगातार आप बने हैं हमारे साथ। प्रशांत भूषण वरिष्ठ वकील हैं, उनको कार्यक्रम में शामिल कर रहा हूं। प्रशांत जी, सुशांत सरीन कह रहे हैं कि फांसी की सजा जरूरी है, खासकर ऐसे मामलों में जहां पर दुर्लभतम मामले हों।
देखिए, सबसे बड़ा जो आर्ग्यूमेंट है फांसी की सजा के खिलाफ, जिसको कि आज 130 देशों ने अपने कानून से हटा दिया है, और दुनिया के ज्यादातर सभ्य देशों ने फांसी की सजा को खत्म कर दिया है, क्योंकि ये समाज में एक जो बर्बरता की जो फीलिंग है उसको बढ़ावा देता है।
लेकिन जिस व्यक्ति के खिलाफ, जिस व्यक्ति को फांसी की सजा दी जानी होती है, उसने तो और भी जघन्यतम अपराध किया होता है, और भी बर्बर काम किया होता है।
ठीक है, हाँ जरूर किया होगा, लेकिन उसका जवाब ये नहीं है कि आप भी उसके साथ उसी तरह से बर्बरता करें। ये तो पहले जैसे कि रोम में प्राचीन काल में होता था कि वो एक अरीना में स्लेव्स को डाल देते थे और ये शेर को छोड़ देते थे उनके ऊपर, और लोग वहां से चीयर करते रहते थे। इसी तरह से समाज में जो अभी हाल में देखने को मिला कि भाई उसको याकूब को फांसी दे दो, तुरंत दे दो, पब्लिकली दे दो, इस तरह की एक मानसिकता समाज में बढ़ाता है। इसीलिए जो सभ्य देश हैं दुनिया के ज्यादातर, उन्होंने इसको खत्म कर दिया।
सुशांत सरीन जी, आप प्रशांत भूषण की बात सुन रहे हैं, आप बीच में हस्तक्षेप कर सकते हैं।
नहीं देखिए, मैं बिल्कुल इनकी बात से किसी भी चीज में कभी भी सहमत नहीं रहा, तो इस मामले में भी बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। और उसका एक कारण ये है कि एक तो जिन देशों की ये बात कर रहे हैं उसमें अधिकांश देश ऐसे हैं जो शायद एक डेवलपमेंट के हिसाब से एक ऐसे कगार पर पहुंच गए, उनकी इकोनॉमीज बहुत ज्यादा समृद्ध हो गई हैं, उनकी सोसाइटी एक लेवल पर पहुंच गई है जहां पर शायद वो इस तरह की लग्जरी को अफोर्ड कर सकते हैं। हम शायद उधर अभी नहीं पहुंचे। दूसरी चीज ये कि ये एक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट भी है, और उससे मुराद ये है कि जब हमको सिर्फ जो वेस्टर्न मुल्क हैं या जो ये ह्यूमन राइट्स का धंधा करते हैं लोग,
जो उनकी राय है, समाज उससे नहीं चलेगा, समाज अपनी जो सोचने का ढंग है उससे चलेगा। और अगर समाज ये मानता है कि अगर कोई आदमी इस तरह का दुस्साहस करता है कि और लोगों की जान लेता है, चाहे कोल्ड ब्लडेड ले या गुस्से में ले, और उसमें भी हमारे यहाँ पर कानून ये जरूर उसमें डिफरेंशिएट करता है कि किस वाक्यात के क्या संदर्भ क्या था जिसमें इस तरह का एक्शन हुआ या किसी की जान गई।
प्रशांत जी, प्रशांत जी, आप सुशांत सरीन की बात सुन रहे हैं।
भेदभाव जरूर करता है, तो ये नहीं है कि अंधा है कानून उसमें, लेकिन जो समाज की जो जो सोचने का तरीका है, मेरे ख्याल कानून को उसी के साथ चलना होता है। वो किसी और देश से या किसी और दुनिया से एक चीज को लाकर यहाँ पर लागू करेगा तो वो मान्य नहीं होगी।
जी प्रशांत जी।
जी हाँ, देखिए सब देशों ने आगे तरक्की करी है और धीरे 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 करके 130 देशों ने इसको अपने कानून से खत्म कर दिया है।
लेकिन सिर्फ मात्र यही एक तर्क नहीं हो सकता।
नहीं, सिर्फ वो तर्क नहीं है, तर्क कई हैं। देखिए एक तो ये है कि कई बार गलती हो जाती है, कानून जो है गलत सजा दे देता है। अमेरिका में अभी करीब 500 जो लोग जिनको की फांसी की सजा हुई थी किसी समय, उसमें से करीब 400 लोगों के बारे में बाद में ये सबूत मिले कि भाई वो बिल्कुल बेगुनाह थे। अब अगर आप उनको फांसी पर चढ़ा देते तो उसको उसके बाद तो उनको वापस नहीं बुलाया जा सकता।
हाँ, जिंदगी जाने के बाद, जिंदगी जाने के बाद वापस नहीं आती बिल्कुल।
ये जो मानते हैं लोग कि भाई इससे बहुत डेटर होते हैं, पहली बात तो फांसी की सजा उन्ही लोगों को दी जाती है जो कि बहुत हार्डेंड टेररिस्ट वगैरह, मतलब कायदे से दी जानी चाहिए, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस कहते हैं ना। तो जो हार्डेंड टेररिस्ट होते हैं, आजकल तो वो सुइसाइड टेररिस्ट टाइप के होते हैं, वो फांसी की सजा से डरते नहीं हैं। उनके लिए चाहे आप उनको आजीवन कारावास दें चाहे फांसी दें।
तो ऐसे लोगों के लिए क्या उपाय है, इस पे हम बाद में आएंगे कार्यक्रम में। बहुत सारे श्रोता लाइन पे हैं जी, नाम बताएं और कहां से बोल रहे हैं और अपनी राय रखें। इस समय प्रशांत भूषण भी हैं और सुशांत सरीन भी हैं, आप सबको सुन रहे हैं। जी नाम बताएं।
फांसी की प्रासंगिकता आज भी बहुत जरूरी है। हिंदुस्तान का समाज इतना अनियंत्रित हो गया है, कानून का डर लोगों के अंदर से खत्म हो रहा है, इसलिए जो जघन्य अपराध हैं, बीभत्स अपराध हैं, जैसे बता रहे थे प्रधान जी, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस, तो इनमें तो फांसी की सजा त्वरित लेनी चाहिए, जो डिले भी नहीं करना चाहिए।
आप ये कह रहे हैं कि इसमें इन सब जो दुर्लभतम मामले, तुरंत फांसी देनी चाहिए, डिले नहीं करना चाहिए। एक और श्रोता को शामिल कर रहे हैं कार्यक्रम में। जी नाम बताएं। जी नाम बताएं।
जी मैं,
माफ कीजिएगा, नाम आपका सुन नहीं पाए। आपकी टेलीफोन लाइन बहुत खराब है, लेकिन आप अपनी बात रखिए। जी हाँ
जी, मैं सौर प्रशांत जी से होगा।
जी
जी, अभी वो बोल रहे थे,
माफ कीजिएगा, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। प्रशांत भूषण से सवाल पूछना चाहते थे। जी हाँ, नाम बताएं।
हेलो।
जी हाँ, जी हाँ
जी, मैं सुधांशु सिंह छपरा बिहार से।
हाँ सुधांशु सिंह जी, अपनी बात रखिए।
सर प्रशांत जी भी बोल रहे थे कि जैसे किसी को फांसी देना चाहिए तो हार्ड एंड रेयर केस में फांसी देना चाहिए। 257 लोग मारे गए मुंबई ब्लास्ट में, उनके लिए हार्ड एंड रेयर केस नहीं हो सकता है।
जी प्रशांत जी, ये हमारे श्रोता हैं बिहार से और कह रहे हैं कि भाई ये तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर का मामला था।
नहीं देखिए, इसमें कई चीजें थी। पहली बात तो जो इनके खिलाफ जो सबूत थे याकूब मेमन के खिलाफ, वो उनके को अक्यूज, यानी कि उनके साथ जिन लोगों को अक्यूज किया गया था उनके पुलिस कन्फेशन थे। पुलिस में जो उन्होंने कन्फेशन किए थे उसमें याकूब मेमन के खिलाफ कुछ कहा गया था। ऑर्डिनरली यानी कि कानून में इसको एविडेंस नहीं माना जाता, क्योंकि पुलिस जो चाहे कहलवा देती है। और इन जो बयान थे, इन लोगों ने जब कोर्ट में रिट्रैक्ट भी कर लिए, वापस भी ले लिए, लेकिन क्योंकि इनको टाडा में चार्ज किया गया था, इस वजह से उसको एडमिसिबल माना जाता है टाडा के अंदर, और इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उन बयान के आधार पर उनको कन्विक्ट कर दिया। याकूब मेनन अपने आप हिंदुस्तान आए थे, अपनी पूरी फैमिली को भी ले आए थे ये सोचकर कि उनको यहाँ पर न्याय मिलेगा। ये ठीक है कि उनके भाई टाइगर मेमन इसके मास्टर माइंड थे, लेकिन इनका इन्वॉल्वमेंट इसमें मुझे नहीं लगता कि इसके कोई ठोस सबूत थे कि कोई खास इनका इन्वॉल्वमेंट था इस हादसे में।
सुशांत सरीन जी
बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं, और ये इस तरह की जो हाफ ट्रुथ्स हैं ये हमने बहुत सुना है पिछले दिनों में। और इन्होंने एक तो वो एक डी रमन साहब का एक आर्टिकल था जिसमें वो स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि ये जुर्म में मुलव्वस थे। पहली बात, उन्होंने उस आर्टिकल में जिसका सहारा लेकर इन्होंने एक झूठ का पुलंदा सब लोगों ने खड़ा किया इसको बचाने के लिए, उसमें उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि वो सरेंडर नहीं कर रहा था। वो आया था, उसने वकील से बात की और वो वापस जा रहा था कराची जहां पर वो बस गए थे सारे के सारे लोग, और उसको एयरपोर्ट पर नेपाल की अथॉरिटीज ने पकड़ा और फिर भारत को सपोर्ट किया। तो ये बात है। दूसरी चीज, आप बाकी अफसरों से पूछें जो इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व थे, वो औपचारिक तौर पर, और आप अगर अनौपचारिक तौर पर भी उनसे पूछें तो वो आपको पूरा जो एविडेंस इकट्ठा किया था इनके खिलाफ उसका पूरा पुलंदा भी है इनके पास। तो ये कहना कि इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था, और जिन लोगों के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं था इसी परिवार के लोगों को आपने उनकी सजाएं माफ भी की, उनको छोड़ा भी, कईयों की सजा जो थी जो ट्रायल कोर्ट ने जिनको मौत की सजा दी थी उसको कम्यूट भी किया गया। तो ये मान लेना कि केवल इन्हीं के या इनके खिलाफ कोई बहुत बड़ा सरकार की तरफ से या न्यायपालिका की तरफ से एक इनजस्टिस हुआ है, ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि जो एविडेंस आया उसी के बेसिस पर इनको कन्विक्ट किया
बिल्कुल,
गया
बिल्कुल,
और इनको
बिल्कुल, हम ये बात समझ सकते हैं कि अदालत जो है सबूत देखती है। हम सिर्फ याकूब मेनन के केस की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक वृहद परिदृश्य में बात कर रहे हैं फांसी की सजा पर। प्रशांत जी, खौफ कानून का काम होता है लोगों में डर पैदा करना, डर कैसे पैदा होगा अगर कानून में इस तरह की सजाएं खत्म हो जाएंगी? तो
नहीं, इससे डर, ये जितने अध्ययन हुए हैं बहुत सारे इस पर स्टडीज हुई हैं, और इसी के आधार पर जैसे मैंने बोला 130 से ज्यादा देशों ने फांसी की सजा या मौत की सजा अपने कानून से खत्म कर दी।
जी, मैं एक फेसबुक पर एक टिप्पणी ले रहा हूँ आप ही के इसी तर्क पर आ रही, जिस देश में हरीश कुमार हैं ये लिखते हैं कि जिस देश में सजाए मौत नहीं होती उस देश में कानून का राज नहीं होता। फांसी की सजा न होना लोकतंत्र के लिए घातक है और इसका खौफ ही देश की संप्रभुता को महफूज रखता है, इसलिए फांसी जरूरी है इंसाफ के लिए। उन लोगों का क्या जिनको जिनके पीड़ित जो जिनके परिवार बिछड़ गए या जो लोग इसका शिकार बने?
उससे उनके परिवार तो नहीं वापस आ जाएंगे ना। सवाल ये है कि आप अगर इसको कहते हैं कि जवाबी हिंसा है ये किसी
ये मध्यकालीन सोच है
देश के तरफ से या किसी स्टेट की तरफ से जवाबी हिंसा इसको कहा गया है, और ये किसी हर समाज में हिंसा की जो जो भावना है उसको बढ़ावा देता है, और इसी वजह से आज हम ये देखते हैं जहाँ ऐसे तो ये कहा जा सकता है कि देखिए वहाँ मिडिल ईस्ट में सऊदी अरेबिया वगैरह में तो हाथ काट देते हैं, पत्थर मार मार के मार देते हैं, पब्लिक फ्लॉगिंग कर करके मार देते हैं, तो ये सब भी होना चाहिए क्योंकि डेटर करने के लिए ये सब भी होना
जी
चाहिए।
बोल सकते
लेकिन
हैं।
सवाल ये है कि क्या हम अपने समाज में और बर्बरता लाना चाहते हैं?
सुशांत जी
देखिए, इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो आपको सूट करता है वही आपका तर्क बन जाए तो फिर जो सारी की सारी जो दूसरा पहलू है उसको आप नज़रअंदाज करते हैं, और आप जो स्टेटिस्टिक्स लेकर आते हैं वो अपने आप को सूट करने के लिए लेकर आते हैं। अब मैं भी आपको एक स्टेटिस्टिक देता हूँ। अब ये प्रशांत जी कह रहे हैं कि यहाँ पर बहुत हिंसा बढ़ रही है समाज में, अब भारत जैसे देश में जहाँ पर मौत की सजा पिछले 10-15 साल में मेरे ख्याल 3 या 4
दी गई है, 3,
तो कितनी आपने या तो ये आप कहें कि आपने 4-5-10 हजार आदमियों को मौत की सजा दी और फिर इसलिए उससे समाज में जो है हिंसा बढ़ रही है। भारत जैसे देश में आपने 3 या 4 लोगों को सजा दी लेकिन हिंसा बढ़ी है कि कम हुई है, पहली बात। दूसरी चीज ये, और मैं इसमें तालिबान की क्या डिफेंस नहीं कर रहा, लेकिन जब आप इस तरह का तर्क देते हैं तो फिर एक वो भी तर्क आता है कि जिस जमाने में तालिबान अफगानिस्तान पर ऊपर काबिज हुए थे और उन्होंने एक लिहाज से अपना जो कानून था जो बिल्कुल एक बर्बरता भरा कानून था एक उनके जो मुझे लगता है, लेकिन जब उन्होंने उसको इन्फोर्स करना शुरू किया और बहुत सारे लोगों को मौत की सजाएं सुनाई, तो उस जमाने में अफगानिस्तान में जिस तरह का कत्लेआम चल रहा था वो बिल्कुल थम गया था। अब वो आप उसको एक ग्रेवयार्ड का पीस माने तो वो भी बात ठीक रहेगी, लेकिन ये कहना कि सिर्फ एक ही पक्ष देना कि अगर आप ये मौत की सजा हटा देते हैं तो समाज में कोई बड़ी अच्छी प्रवृत्ति आती है।
प्रशांत जी आपकी आखिरी टिप्पणी ले रहा हूं क्योंकि आपको जाना भी है जी, इस तर्क का जवाब दीजिए और बहुत बहुत शुक्रिया।
देखिए 130 देशों ने क्यों धीरे धीरे करके अपने कानून से ये हटा दिया, बहुत सारे ये स्टडीज करे गए, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने किए, हिंदुस्तान में अभी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने भी इस पर एक बहुत लंबा स्टडी किया है जो कि लॉ कमीशन देख रहा है, लॉ कमीशन ने इस पर पूरा अभी हाल में डिस्कस किया, जितने भी इस पर स्टडीज हुई हैं दुनिया में, अच्छी अच्छी पीयर रिव्यूड स्टडीज जिसको कहते हैं, जिसका कि सारे समाज शास्त्रियों ने अध्ययन करके देखा है, उनका ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि इससे कोई खास डिटरेंस नहीं होती और समाज में हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ती है।
जी प्रशांत जी बहुत जी 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 प्रशांत जी बहुत 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 शुक्रिया अपने तर्क और अपना पक्ष रखने के लिए कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम में यहाँ पर हम श्रोताओं को शामिल कर रहे हैं जी, नाम बताएं और कहाँ से बोल रहे हैं बताएं प्लीज।
पीपलसाना जिला मरादराज से मोहम्मद फहीम बोल रहे हैं सर।
जी मोहम्मद फहीम
जी सर।
जी
सर मैं देखिए जैसे याकूब मेमन को फांसी दी गई है तो लोगों को उनके प्रति में सत्म विशेष सतम मुस्लिम समुदाय में सिंपैथी बढ़ी है, उन्हें ये लगता है कि जब सरकार और न्यायपालिका हमारे साथ इंसाफ नहीं कर रही, क्योंकि नरोदा पाडिया केस हो या हाशिमपुरा हत्याकांड, देखिए उसमें 21 आरोपी सब बरी हो गए। नरोदा पाडिया कांड में हम देखते हैं कि मुसलमान मारे गए 57, उसमें बाबू बजरंगी और माया कोडनानी को 28 और 32 साल की सजा हुई, लेकिन अफसोस का विषय यह है कि गुजरात सरकार ने उनकी फांसी की सजा नहीं करी मांग, यानी SIT को अनुमति नहीं दी, तो इससे यह धड़क रहा है कि फिर सरकार और न्यायपालिकाएं क्या अल्पसंख्यकों को ही खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगी।
जी बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत जी, इनका जो दृष्टिकोण है और इनका नज़रिया ये है कि इस तरह की बात सामने आ रही है कि सरकार जो है सिर्फ एक विशेष संप्रदाय को ही निशाना बना रही है और सरकार विशेष संप्रदाय के लोगों को ही ये सज़ा दे रही है।
नहीं, मेरे ख्याल ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है और एक दुष्प्रचार भी हुआ है जो शायद मुस्लिम समाज में एक बहुत बड़े तबके ने जिसको एक लिहाज से दिल से लगा ली है बात, लेकिन ये हकीकत के बरक के मुनाफी है। अब देखिए आप याकूब मेमन का जो केस था 22 साल चला, 22 साल के बाद उसको फांसी की सजा मिली, एक न्याय पालिका की एक प्रोसेस होता है, उसी से कोई भी केस जाएगा। अब अगर या तो आप ये बोलें कि हमने किसी को डेजिग्नेट कर दिया कि इसने कत्लेआम किया, बस उधर ही फौरन इंसाफ किया जाए और फौरन सूली पे लटका दिया जाए, तो फिर याकूब मेमन को भी 1993 में लटका दिया जाता। लेकिन अगर आपने वो प्रोसेस से जाना है जैसे बाबू बजरंगी, और मैं उसका कोई वकील नहीं हूँ, और अगर उसने जो किया है जिसके खिलाफ उसको मौत की सजा भी सुनाई गई है तो उसको मौत की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन क्या जो प्रोसेस या जो आपने अपील्स याकूब मेमन को अलाउ की थी क्या वो आप बाबू बजरंगी को नहीं देंगे क्या? तो वो भी उसी प्रोसेस से जाएगा, और अगर वो वहां पर पहुंचकर उसको मौत की सजा मिलती है तब मैं उस समय देखूंगा कि प्रशांत भूषण और इनके जो बाकी सारे सहयोगी हैं जो रात के 3-3 बजे कोर्ट में अपियर हो रहे थे, क्या वो बाबू बजरंगी के लिए भी उसी तरह का एक्टिविज्म दिखाएंगे या फिर इनके लिए वहां पर एक सेक्युलर और कम्युनल वाला के याकूब मेमन जो था वो तो सेक्युलर था लेकिन बाबू बजरंगी कम्युनल है। मेरे हिसाब से दोनों ही क्रिमिनल्स हैं और दोनों को ही मौत की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन एक प्रोसेस है उसी के बाद वो सजा सुनाई जाएगी।
जी कार्यक्रम में एक श्रोता शामिल हो रहे हैं, राणा शामिल हो रहे हैं। राणा जी आप सुशांत सरीन की आवाज सुन रहे होंगे, इनका तर्क है कि फांसी की सजा होनी चाहिए और ये कोई भेद नहीं कर रहे बाबू बजरंगी माया कोडनानी या इस तरह के जितने केसेस चल रहे हैं, आपका क्या कहना है?
ये देखिए मेरा मानना है कि यहाँ व्यक्ति विशेष की बात मत कीजिए, आज की हमारी तारीख में जो हमारा क्रिमिनल जुरिसप्रूडेंस है उसमें चूंकि फांसी की सजा का प्रावधान है इसलिए अदालतें देती हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि हमारे जैसे सभ्य देश में, एक ऐसे देश में जिसने पूरी दुनिया को विश्व शांति का संदेश दिया है, जो गौतम बुद्ध का देश है, महावीर का देश है, गांधी का देश है, ऐसे देश में आप राज्य प्रायोजित हिंसा का समर्थन बिल्कुल नहीं कर सकते।
सुशांत जी
से मैं पूछना चाहूंगा कि आप देखिए अगर आप पिछले वर्ष के आंकड़े देखिए तो सबसे अधिक फांसी ईरान में और सऊदी अरब में हुई, तो क्या हिंदुस्तान का भारत का आदर्श अब सऊदी अरब और ईरान बनेगा?
सुशांत जी, आप राणा जी की आवाज़
सुन। बात तो ये है कि ये गौतम बुद्ध का देश और वो 2000 साल पहले था, और उन 2000 साल में
महात्मा गांधी भी कुछ दिन पहले
आप, अरे साहब मेरे को बोलने दीजिए, अब आपने बोल लिया, मैं चुप था उस समय। कितने आक्रमण हुए और क्या क्या नहीं हुआ, तो या तो फिर आप ये कहें कि फौज को भी मत रखें, उसकी भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम भाईचारे और वो क्या वासुदेव कुटुंबकम वगैरह में विश्वास रखते हैं, तो इसको ये पुलिस भी रखने की क्या जरूरत है, हम तो बड़े पीसफुल लोग हैं। समाज ऐसे नहीं चलता, पहली बात। दूसरी चीज ये कि सऊदी अरेबिया और ईरान में अगर देखा जाए, आप जो मर्जी, आप जिस मर्जी चश्मे से उनका इमेज देखें, लेकिन वहां पर आप जो मर्डर का रेट है उसको आप कंपेयर कर लें किसी और देश से, तो आपको बहुत वो कम नजर आएगा। और जहां पर कानून की जो व्यवस्था है ठीक तरह काम करती है, और यहां में मैं सहमत हूं कि भारत में जो क्रिमिनल जस्टिस का सिस्टम है उसमें बहुत सारी खामियां हैं और उसमें बहुत रिफॉर्म की जरूरत है, ये मैं जरूर मानता हूं। और इसमें मैं एक और चीज ऐड कर दूं कि मैं तो ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर में भी विश्वास नहीं रखता, और वो इस करके क्योंकि फिर ये एक जज की डिस्क्रिशन पे होता है या उसके बायसेस के ऊपर होता है कि वो किसको मौत की सजा सुनाए और किसको ना सुनाए, और कहीं पे वो जब किसी को एक को सुनाता है और दूसरे को नहीं सुनाता, तो फिर जिस तरह की हमारे को एक प्रतिक्रिया नजर आ रही है मुस्लिम समाज से कि जनाब मुसलमानों को तो फांसी की सजा मिलती है लेकिन जो हिंदू ये कम्युनल वाले लोग थे जिन्होंने राइट्स में पार्टिसिपेट किया उनको आपने कोई किसी को एक को आपने उम्र कैद की सजा सुना
दी। राणा जी आप बात सुन रहे हैं सुशांत जी की।
सुशांत जी जो है बहस को दूसरी दिशा में ले जाना चाह रहे हैं और बिना वजह इसको भ्रमित कर रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई बिल्कुल जरूरी है और मेरा मानना है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में राज्य को मजबूत होना होगा। आप इस तरह की व्यवस्था कायम कीजिए कि आप यहाँ घुसपैठ ना हो, आप इस तरह की व्यवस्था कायम कीजिए कि पाकिस्तान और ऐसे आपके जो शरारती पड़ोसी हैं वो ऐसी कोई कार्रवाई करने से डरें। लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है कि आंख के बदले आंख वाले सिद्धांत से आज की दुनिया नहीं चलेगी। और हमें गर्व है, मतलब सुशांत जी तो व्यंग कर रहे हैं, महात्मा बुद्ध और महावीर और गांधी उन्हीं लोगों का देश है, हमने विश्व शांति का पाठ पढ़ाया है। और आप ये देखिए
आज हमारी
गणना ईरान और सऊदी अरब के साथ की जा रही है। किसी भी सभ्य मुल्क में आज मौत की सजा नहीं है
जी,
और मतलब और ये बिल्कुल नहीं हो सकता है कि केवल मौत की सजा से आप आतंकवाद पे काबू पा लें, ऐसा बिल्कुल नहीं।
राणा जी वक्त आपका तर्क आ गया, बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आखिरी टिप्पणी सुशांत जी, भाई बर्बर समाज को हम क्यों बनाएं?
ये अगर ये वाली जो तर्क है इसको मैं मान लूं तो फिर आतंकवाद को संभालने के लिए मेरे ख्याल फिर महात्मा गांधी और गौतम बुद्ध की जो फिलॉसफी है वो आतंकवादियों को हम अगर पढ़ाएं तो हो सकता है कि उससे वो आतंकवाद करना छोड़ दे।
लेकिन
मैं तो इस चीज में मानता नहीं।
आखिरी तर्क, आखिरी तर्क
चीज ये कि जब सभ्य देशों की बात करते हैं तो जो जॉन से देश ने एक लिहाज से ह्यूमन राइट्स का ठेका उठाया हुआ है अमेरिका ने,
हाँ।
तो क्या वहां पर मौत की सजा नहीं है? क्या हम उसको एक असभ्य
कुछ राज्यों में कुछ राज्यों में नहीं है, कुछ राज्यों में नहीं है सुशांत जी, बहुत
कुछ राज्यों में नहीं है लेकिन आमतौर पर राज्यों में है।
लंबी बहस है और इसमें तर्क आते रहेंगे और तर्क के जवाब भी आते रहेंगे। सुशांत सरीन, बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और इससे पहले कि कार्यक्रम में हम आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर।
म्यांमार के राष्ट्रपति दयन सैन ने देश के चार क्षेत्रों में भारी बाढ़ के कारण आपात स्थिति की घोषणा कर दी है। अफगान तालिबान सुप्रीम काउंसिल के एक प्रवक्ता मुल्ला अब्दुल मनन नियाजी ने बीबीसी को बताया है कि नए नेता के चयन के लिए काउंसिल से परामर्श नहीं किया गया। खबर है कि अफगानिस्तान का चरमपंथी गुट तालिबान सरकार से शांति वार्ता के विचार से अब पीछे हट रहा है। बोइंग 777 विमान के अवशेषों को जांच के लिए फ्रांस ले जाया गया है। इन्हें गुमशुदा मलेशियाई एयरलाइन फ्लाइट MH370 के अवशेष माना जा रहा है। तुर्की के आधिकारिक न्यूज एजेंसी के मुताबिक पिछले एक हफ्ते में कुर्द चरमपंथी गुट PKK के ठिकानों पर हवाई बमबारी में करीब 260 कुर्द लड़ाके मारे गए हैं। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा के कार्यक्रम इंडिया बोल में बस इतना ही। वो श्रोता जो शामिल हो पाए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो नहीं शामिल हो पाए उनसे माफी मांगते हैं। मोहनलाल शर्मा को विदा दें, नमस्कार।